पृष्ठ संख्या 31। वे भारतीय संघ में कमजोर केंद्र के हिमायती नहीं थे। वे चाहते थे कि देशी रियासतें भारतीय संघ में विलीन हों, किंतु अपने अधिकारों के साथ नहीं। भारत की संविधान बनाने वाली सभा द्वारा पारित सभी अनुच्छेदों के पालन की गारंटी विलीन होने वाले राज्यों में रहे। भारतीय संघ में विलीन होने वाले राज्यों का अपने आकार और आबादी के अनुपात में पुनर्गठन हो। दरमियानी समय में जो जहाँ के राजा हैं, वे भारत सरकार की कड़ी निगरानी में हुकूमत करते रहें, किंतु हर हालत में ब्रिटिश इंडिया के राज्य व देशी राजाओं द्वारा शासित भारत के एकमात्र और अविच्छिन्न अंग हैं। एक बार संघ में विलीन होने वाला राज्य हर हालत में संघ का हिस्सा है और उसका फिर से आंशिक विभाजन भी नहीं किया जा सकता। ऐसे समय में जब भारत का विभाजन संप्रदाय के आधार पर हो रहा था, शेष भारत तीन हिस्सों में बटा था। इसका एकीकरण आजाद भारत के लिए संविधान बनाने के साथ साथ एक महान कार्य था। उस हेतु डॉक्टर अंबेडकर ने एक व्यावहारिक और स्थायी समाधान प्रस्तुत करने की कोशिश की। उस समय बहुत से राज्य भारतीय संघ में अपने को विलीन करने के विरुद्ध थे। डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि फिलहाल बिना जोर जबरदस्ती के ऐसे राज्यों से भारतीय संघ में ही विलीनीकरण की हामी भरा ली जाए और समयानुसार इनके प्रभुत्व को समाप्त कर भारतीय एक के बद्ध प्रशासन का इन्हें हिस्सा बनाया जाए और इस हिसाब से वे क्वालिफाइड और डिसक्वालिफाइड राज्यों के रूप में बंटवारा कर रहे थे। पहले कोटि में वे राज्य थे जिनमें प्राकृतिक संपदा भरपूर थी, जो अपने प्रजाजन के लिए अच्छे रहन सहन की व्यवस्था कर सकते थे, जो बाह्य आक्रमण से सुरक्षा एवं आंतरिक अशांति को दबाने की सैन्य शक्ति रखते थे, जो आधुनिक राज्यों की कसौटी पर खरे उतरकर अपने प्रजाजन के लिए सुख सुविधा इकट्ठा कर सकने की सामर्थ्य रखते थे। दूसरे कोटि में राज्य जो पूरी तौर पर विलीन तो नहीं थे, लेकिन भारत के ही हिस्सा थे। उनके संबंध में वे भारतीय संघ को यह अधिकार दिलाना चाहते थे कि इस कोटि के राज्यों के हिस्से को एक किसी परिपक्व प्रशासकीय इकाई में विलीन करने, उसकी सीमा का पुनर्निर्धारण करने और पुनर्व्यवस्थित करने की संपूर्ण शक्ति भारतीय संघ में ही निहित हो। उनके अनुसार संघ अपने में भारत के साथ जिन इलाकों का स्वाभाविक रिश्ता है या जो भारत की सीमा पर बसे हैं, उन्हें किसी भी समय सम्मिलित कर सकते हैं, उन शर्तों के अधीन जो परस्पर सहमति से तैयार हो। लेकिन सहमति का बिंदु भारतीय संविधान द्वारा तैयार मूलभूत भावनाओं से अलग का नहीं होगा। भारत में पैदा हर नागरिक भारतीय संघ का नागरिक माना जाएगा। भारत में पैदा हर नागरिक को जो भारतीय संघ का नागरिक होगा, उसे वंश की उच्चता, धर्म अथवा संस्कार के आधार पर इस अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। जीवन, संपत्ति व स्वतंत्रता का अपहरण कानून की विहित प्रक्रिया को पूरा किए बिना नहीं किया जा सकेगा तथा सभी को कानून की समान सुरक्षा मिलेगी। सभी के समान नागरिक अधिकार होंगे व कानून के समक्ष समता होगी। कोई भी ऐसा नागरिक जो दूसरे नागरिक को सार्वजनिक स्थलों का उपयोग करने में बाधा पहुंचाएगा, जैसे सार्वजनिक जलाशयों व कुओं, सड़कें, गली, शैक्षिक संस्थाओं आदि, वह दंड का भागी होगा। पृष्ठ संख्या 32। सभी नागरिकों का सार्वजनिक संस्थाओं, वाहनों पर समान अधिकार होगा। किसी को उसके धर्म, जाति, लिंग अथवा सामाजिक स्तर के आधार पर कोई पक्षपात नहीं किया जा सकेगा। हर नागरिक को देश के किसी हिस्से में बसने की आज़ादी होगी। केवल इसी आधार पर कोई राज्य किसी देश के नागरिक को बसने देने से मना कर सकता है यदि वह हैबिचुअल क्रिमिनल है। उस राज्य के सांप्रदायिक संतुलन को बिगाड़ने की मंशा रखता है वह जनता के दया खाते पर स्थायी रूप से निर्भर हो। किसी व्यक्ति को कोई दूसरा धर्म स्वीकार करने अथवा दूसरे धर्म के रीति रिवाजों को स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। 16 वर्षों तक बच्चे की धार्मिक शिक्षा का निर्धारण करने का अधिकार अभिभावकों को होगा। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। देश के समस्त नागरिकों को अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए देश की सर्वोच्च अदालत तक सीधे जाने और उस नागरिक के हितों की रक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय को हैवियस कार्पस, को वारंटो प्राहिविसन मैंडमस जारी करने का अधिकार होगा। यह अधिकार केवल बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति के समय ही स्थगित किया जा सकता है। देश की जो भी संपत्ति होगी उसका स्वामित्व व संरक्षण राज्य द्वारा ही किया जा सकेगा। इंश्योरेंस पर राज्य का स्वामित्व होगा और कृषि राज्य का उद्योग होगा। इस कोटि में आने वाले कृषि फार्मों और उद्योगों को शासन पुनर्वास मुआवजा देकर राज्य के हक में इनका राष्ट्रीयकरण कर सकेगा। बड़े कृषि फार्मों को राज्य गांव के गरीब लोगों को हस्तांतरित कर उनसे सहकारिता के आधार पर खेती कराएगा। उक्त जमीन ग्रामीणों को इस रूप में दे दी जाएगी कि कोई जाति और धर्म के आधार पर नहीं, कोई भूस्वामी नहीं होगा, कोई पट्टाधारी नहीं होगा और कोई भूमिहीन मजदूर नहीं होगा। राज्य कृषि सुधार हेतु खाद, पानी, पशु, औजार आदि व्यवस्था सामूहिक कृषि कार्यों के लिए करेगा और जो व्यक्ति इन शर्तों को तोड़ेगा उसके खिलाफ दंडात्मक व्यवस्था होगी। उन्होंने प्रधानमंत्री का चुनाव संपूर्ण संसद द्वारा कराने की सलाह दी एवं अल्पसंख्यक व अनुसूचित जाति के मंत्रियों का चुनाव उनके सदस्यों द्वारा किया जाएगा। इन्हें अपने जाति की संख्या के अनुपात में कार्यपालिका और विधानपालिका में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रस्तुत किया गया मसविदा भारत की विभिन्न समस्याओं का निदान करता है। वे राज्य को ही देश की आर्थिक दशा सुधारने का संपूर्ण दायित्व देना चाहते हैं। संपत्ति का समान बंटवारा करते हुए, निजी क्षेत्र के लिए दरवाजे बंद करते हुए, मुल्क की आर्थिक तरक्की के गठन का सारा जिम्मा राज्य में निहित हो, ऐसी उनकी मंशा थी। उक्त संविधान के मसविदे की व्याख्यात्मक टिप्पणी लिखते समय पृष्ठ 31 पर वे स्पष्ट करते हैं कि कृषि का सामूहिक पद्धति से उपयोग करते हुए राज्याधीन खेती और उद्योग एक तरह का राज्याधीन समाजवाद है। राज्य के सहयोग से ही कृषि और उद्योग उत्पादन युक्त हो सकता है। सरकारी क्षेत्र में बीमा अनुबंधों में ही विशेष सुरक्षा की गारंटी है। उनका मत था कि भारत के तीव्र आर्थिक विकास के लिए स्टेट सोशलिज्म आवश्यक है। निजी क्षेत्र कृषि में कोई समृद्धि नहीं ला सकते। 6 करोड़ अछूतों को, जो भूमिहीन मजदूर हैं, उनके जीवन में खुशी चकबंदी और हलबंदी कानूनों से नहीं आ सकती। केवल सहकारी खेती ही इसका समाधान है। उनका आग्रह था कि देश की आर्थिक कंगाली बेरोजगारी का कारण है। किसी बेरोजगार व्यक्ति के लिए मूलभूत अधिकारों के क्या मायने हैं, किसी बेरोजगार से पूछा जाए कि उसे किसी काम में जिसमें कुछ वेतन मिलता हो, अवकाश और काम के घंटे निर्धारित हों। पृष्ठ संख्या 33। संघ बनाने व वाणी की आजादी भी हो तो बेकार व्यक्ति तत्काल उस कार्य को स्वीकार कर लेगा। वे स्वयं उत्तर देते हैं कि बेकार व्यक्ति के लिए भोजन चलाने वाली व्यवस्था ज्यादा महत्वपूर्ण है। वे संसदीय लोकतंत्र व निजी आजादी के साथ ही राज्याधीन समाजवाद के समर्थक थे। लोकतंत्र की आत्मा एक व्यक्ति एक आस्था में निवास करती है। वे लोकतंत्र के उन सिद्धांतकारों की वैचारिक खिल्ली उड़ाने से नहीं थके जो केवल मताधिकार और व्यक्तिगत आजादी तथा संवैधानिक संसदीय लोकतंत्र को ले जाना चाहते थे। उनका आरोप था कि इस सिद्धांत के मानने वालों ने देश की आर्थिक पुनर्रचना का कार्य राज्य के नियंत्रण से बाहर करके लोकतंत्र का नुकसान किया है। भारत जैसे नवोदित राष्ट्रों को इस तरह के संविधानों की हूबहू नकल नहीं करनी चाहिए, अपितु संविधान हमारे भाग्य का निर्णायक है ऐसा मानकर अपना संविधान बनाना चाहिए। उन्होंने अपने मसविदों में अछूतों की समस्या का व्यापक और स्थायी समाधान प्रस्तुत किया। वे समझते थे कि भारत का बड़ा अछूत समाज चारों तरफ से उच्च वर्णीय घेरे में है, जो उन पर निरंतर अत्याचार और जुर्म करने के बावजूद अपने कुकृत्यों के लिए शर्मिंदा नहीं होते। ऐसी हालत में दलित समाज अपनी सुरक्षा हेतु राज्य और प्रशासन पर भी अपनी सुरक्षा के लिए भरोसा कर सकता है। लेकिन प्रशासन पर भी सवर्णों का दृष्टिकोण अछूतों के प्रति संवेदनशील नहीं है। वे अछूतों के साथ भेदभाव की नीति अपनाते हैं और उनके मौलिक अधिकारों से वंचित रखते हैं। इस तरह अछूत सवर्ण हिंदू समाज उच्च वर्गीय अफसर शाही के दूहरी चक्की में पिस रहे हैं। ऐसी हालत में अछूतों के लिए स्वराज्य के क्या मायने हैं, यदि प्रशासन की ही तरह संवेदना शून्य विधायिका हो जाए तो अछूतों का क्या होगा? स्वच्छंद प्रशासन विधायिका से नियंत्रण विहीन अछूतों के प्रति अपने भेदभाव जन्म नीति का ही अनुसरण करता रहेगा। उन्होंने स्वीकार किया कि हूबहू ब्रिटिश कैबिनेट प्रणाली स्वीकार करने से मंत्रिमंडलीय स्थायित्व तो आएगा। भारत में जातियों वर्णों के संघर्षों के कारण विभिन्न वर्गों के हितों हेतु बहुत से दल और गुट खड़े हो जाएंगे। इससे भारत में अस्थिरता का वातावरण रहेगा। उनके अपने व्याख्यात्मक नोट में पृष्ठ संख्या 38 पर, जिसमें भारत के भावी परिदृश्य का आकलन किया है, वह आज की राजनैतिक परिस्थिति में परिलक्षित हो रहा है। उन्होंने तभी भविष्यवाणी कर दी थी कि मुख्य दलों द्वारा लाई गई यह स्थिरता बहुत दिनों तक नहीं रहेगी, किंतु उन्होंने यह भी याद दिलाया कि बार बार सरकारों का बदलना कोई अराजकता नहीं है। ज्यों ज्यों गरीबी में जागरूकता आएगी, वे अपने आर्थिक हितों की सुरक्षा हेतु अलग अलग किंतु छोटे छोटे दलों का गठन करेंगे और यही भारतीय लोकतंत्र में अस्थिरता की जड़ होगी। उन्होंने संपूर्ण मसविदे में अछूतों की दुर्दशा का वर्णन किया है। किस तरह भारतीय समाज छुआछूत में विभक्त होकर भारत के कमजोर वर्गों को कृषि करने का भी अधिकार देने को तैयार नहीं है, उसका निदान उन्होंने बताया। पूना पैक्ट के आगे जाकर अछूतों को उनकी आबादी के अनुपात में विधायिका और कार्यपालिका में उन्हें जगह मिले। अफसर शाही से ही अछूत वर्गों को संविधान में वर्णित उनके अधिकार सुरक्षित भाव से मिलेंगे, ऐसी उनकी मान्यता थी। यह मसविदा उनके समग्र वैचारिक चिंतन की संक्षिप्त कानूनी और संवैधानिक निचोड़ है। अब हमें आगे यह देखना है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने इन विचारों का किस सीमा तक भारतीय संविधान में समावेश कराया।